समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 30 अप्रैल 2024 की नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से उपस्थित हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं निखिल कुमार, मेरे साथ में रम्या। नमस्कार रम्या।
नमस्कार निखिल एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू अ फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज magazine program aaj severe wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national and international news, metro city updates, some historical information, as well as we'll remember some famous personalities who were born or who passed away on this day, that is 30th of April. So let's begin with the headlines first. The campaigning for the third phase of elections is going on in full swing. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi is scheduled to address public rallies today in Madha, Osmanabad and Latur in Maharashtra to support Mahayuti candidates. In Latur, Mr. Modi will hold a public rally for the party candidate Sudhakar Shrangare, who is contesting against Dr. Shivaji Kalge of Congress. In Osmanabad, Prime Minister Modi will be canvassing for NCP Ajit Pawar candidate Archana Patil, who is contesting against Om Prakash Rajenimbalkar of Shiv Sena UBT. In Madha, Mr. Modi will hold the rally in favour of BJP's candidate for Rajneet Singh Naik Nimbalkar, who is pitted against NCP SP candidate Dhairyashil Mohite Patil. Yesterday, the Prime Minister held rallies in Solapur, Satara and Pune.
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने गरीबों को सशक्त बनाया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति गरीबों को इतना सशक्त बनाने की है कि जिससे वे खुद गरीबी रेखा से बाहर आ सकें। एक निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने 30 साल तक गठबंधन सरकारों के दौरान अस्थिरता देखी है। उन्होंने कहा कि आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने एक स्थिर, मजबूत और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। श्री मोदी ने दावा किया कि भारत की आय अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के 10 साल के दौरान मुद्रास्फीति सबसे कम रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार समाज के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एनडीए सरकार ने जनता से जुड़ने और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए सोशल मीडिया जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र के सतारा में एक रैली में उन्होंने विपक्ष पर एनडीए के नेताओं के फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाया। इससे पहले सोलापुर में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के 60 वर्ष के शासनकाल की तुलना में पिछले 10 वर्ष में न्याय के लिए बहुत अधिक काम हुआ है।
In Manipur, the election authority has taken up all measurements to conduct the re-polling in 6 polling stations of the outer Manipur parliamentary constituency today. 5 polling stations in Ukhrul district and 1 in Senapati will go to re-polling today from 7 a.m. to 4 p.m. The Election Commission of India announced that the voting process in these polling stations conducted on 26th April has been treated void and directed for re-polling.
गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में प्रचार किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बदायूं में और अन्य दलों के प्रमुख नेताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में यादगिरि जिले के गुरमीत काल में चुनावी सभा में देश में बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के हित के बारे में सोचती है। उन्होंने सत्ता में आने पर लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांटने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा, कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के नेता देशभर में प्रचार अभियान में लगे हुए हैं।
The Congress party has approached the ECI over the alleged misquoting of their Lok Sabha manifesto by the BJP. Talking to media after meeting the Election Commission, senior party leader Supriya Srinet alleged that the BJP has been falsely attributing declarations that are not part of their manifesto. She said the party has also objected on the use of religious symbols during political campaigns.
Bharatiya Janata Party ke ek shishtamandal ne chunav mein deep fake video aur Pashchim Bengal mein hinsa ke muddon ko lekar Nirvachan Aayog se mulaqat ki. Party ke varishth neta aur kendriya mantri Ashwini Vaishnaw ne bataya ki Congress Lok Sabha chunav ke dauran apne social media platform par deep fake video dalkar logon ko गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा करा रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती है.
The Assam Rifles has recovered huge quantity of arms and ammunition along Indo-Myanmar border in Mon district of Nagaland. The search operation launched during early morning hours yesterday resulted in apprehension of one individual and recovery of huge quantity of arms and ammunition. These comprise of 11 mortar tubes, 10 pistols, 198 handheld radio sets, one satellite phone and other war-like stores. The Defence Ministry said recovery of these heavy caliber military-grade weapons is a major success for the border sealing operation underway by Assam Rifles. In Kerala, 5 persons were killed when a car in which they were travelling rammed against an LPG cylinder-laden truck near Cherukunnu in Kunnur district last night. Those killed included a woman and a 9-year-old boy. All the 5 died on the spot. The mishap took place when the occupants of the car were returning from Kozhikode to Nileshwaram in Kasargod district.
तीसरे नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे दिन 4 अलग अलग परियोजनाओं के लिए 913 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई. उद्योग विभाग ने कल स्वचालित तरीके से विदेशी निवेश अनुमोदन प्रणाली का उद्घाटन किया. विदेशी निवेशक स्वचालित माध्यम से शत प्रतिशत शेयर स्वामित्व या पहले से संचालित कंपनी में संयुक्त उद्यम या फिर निवेश पूंजी के साथ एक नई कंपनी स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारत ने कल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यक्रम में खालिस्तान के नारों का कड़ा विरोध किया. विदेश मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया. मंत्रालय ने कहा कि ये गतिविधियां कनाडा में एक बार फिर अलगाववाद, उग्रवाद और हिंसा को बढ़ावा देना दर्शाती हैं.
The India Met Department has forecast heat wave conditions to continue in Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh and Puducherry during the next 5 days. These conditions will also continue over West Bengal, Sikkim and Gujarat during the next 2 days. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Delhi Capitals by 7 wickets at Eden Gardens in Kolkata last night. Kolkata overhauled the target of 154 runs, scoring 157 for 3 in 16.3 overs. Today, Lucknow Super Giants will take on Mumbai Indians at Ekana Cricket Stadium in Lucknow.
महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज खेला जाएगा. यह मुकाबला बांग्लादेश के सिलहट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर कर रही हैं जबकि बांग्लादेशी टीम की कप्तान निगार सुल्ताना हैं. चीन के चेंगदू में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने ग्रुप सी के मुकाबले में इंग्लैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है. पहले मैच में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने हैरी हुआंग को हराकर भारत को बढ़त दिलाई. वहीं दूसरे मैच में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की वर्ल्ड नंबर 3 जोड़ी ने बैनलेन और सीन वेंडी को हराया. तीसरे मैच में किदांबी श्रीकांत ने नदीम नलवी को परास्त किया. एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने दूसरा डबल्स मुकाबला जीतकर स्कोर 4-0 कर दिया. तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार. और श्रोताओं, वक्त है प्रमुख महानगरों यानी राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से जुड़ी खबरों को जानने का. तो राम्या, कहां से शुरुआत कर रहे हैं हम?
वी स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई. निखिल
जी,
सो कमिश्नर जे राधाकृष्णन ऑफ द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन गेव ऑफिशियल्स इंस्ट्रक्शंस टू मोबिलाइज असिस्टेंस फॉर लो लाइंग रीजन्स एंड गेट रेडी फॉर समर रेन्स. According to a notification, owing to civic works being carried out by several authorities, there will be an abrupt and temporary flooding of low-lying areas and certain roads might become impassable. Additionally, he asked officers to quickly work with service bureaus, stressing that delays not only annoy tourists but also make locals suffering worse. He mentioned problems like pothole detection and repair, open manholes, silted stormwater drains, continuing drain construction and upcoming road repairs. Coming to Bengaluru, the Bangalore Water Supply and Sanitation Board, BWSSB Chairman, Dr. V. Ram Prasad Manohar, has issued instructions to the officials to use notices to users releasing sanitary water illegally into storm water drains and underground drainages. The move will begin from 1st of May. On preliminary inspection by the officials of BWSSB, it was found out that out of the 528 buildings inspected, 446 such users were found releasing used water to the underground drainage illegally. The authorities have taken action to regularize 221 of the violators after receiving fees. Notices are issued to 390 users to legalize their discharge line. The authorities have been asked to survey apartments with over 20 houses, hotels and commercial buildings, and if the civic rules are violated, then penalties will be imposed on them from 7th of May onwards. Even after 15 days of imposing penalties, if the violators do not legalize their waste disposal system, then legal action will be taken against them. Coming to Hyderabad, in Telangana, all major parties have intensified their campaign to woo voters following closure of withdrawal of nominations yesterday. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi will be addressing a poll rally in Zahirabad Lok Sabha constituency at Aladurg in Medak district. This is Mr. Modi's second meeting in the state after the poll schedule was released last month. BJP leaders informed that another senior leader, Amit Shah, will be campaigning in Hyderabad tomorrow in support of the party candidate, Madha Vilata. Meanwhile, BJP President JP Nadda campaigned in support of party candidates in Khammam, Mehbubabad and held a roadshow at Nizampet. He slammed the Congress that it is spreading fake information out of frustration against BJP and its senior leaders. He also alleged that Congress has been continuously ignoring the needs of people, and whereas BJP and its leader Narendra Modi is striving for Vikasit Bharat. Minister of State for Information and Broadcasting, also in Telangana, is taking part in the election campaign. And now, for some metro city updates from Delhi, Mumbai and Kolkata, we will give it over to Nikhil.
Okay. Delhi mein agle mahine hone wale Lok Sabha chunav ke liye rajdhani mein chunav prachar zor shor se chal raha hai. Sabhi pratyashi apne kshetron mein ghar ghar jaakar jan sampark kar rahe hain aur apne paksh mein vote dalne ki appeal kar rahe hain. Is kadi mein kal uttar purvi Delhi se bhajpa pratyashi Manoj Tiwari ne apne Lok Sabha kshetr ke Khajuri kshetr mein ayojit ek samajik baithak mein hissa liya. Wahi Nayi Delhi seat se bhajpa pratyashi बांसुरी स्वराज ने राजेंद्र नगर में जनसंपर्क किया और लोगों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की. इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने जंगपुरा विधानसभा के सिद्धार्थनगर में एक बैठक की. वहीं पार्टी प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने आरकेपुरम विधानसभा के प्रिया पार्क में सुबह की सैर के दौरान लोगों से भेंट की. दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने अपनी स्वीप पहल के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कल राजधानी के पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान मतदान के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित हुई. निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा उत्तर दिल्ली स्थित एसबीआई कॉलोनी के एक स्कूल में भी विद्यार्थियों को मतदान के बारे में जानकारी देने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसके अलावा सोशल मीडिया मंचों पर भी नागरिकों को मतदान संबंधी जानकारी दी जा रही है. दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कल कुल 13 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए. लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है. दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को एक ही चरण में मतदान होगा. मतगणना 4 जून को कराई जाएगी. इस बीच दिल्ली पुलिस ने राजधानी के आम्बेडकर नगर और तिगड़ी क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल और 2 चाकू जब्त किए हैं. पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने रात में गश्त के दौरान इन लोगों को पकड़ा है. चलते हैं मुंबई. दक्षिण मुंबई से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई के उम्मीदवार अनिल देसाई और ठाणे से उम्मीदवार राजन विचारे ने कल अपने नामांकन दाखिल किए. इसके अलावा दक्षिण मध्य से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना उम्मीदवार राहुल शेवाले ने 5वें चरण के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया. पनवेल सीएसएमटी लोकल ट्रेन कल लगभग 11:35 पर उस समय पटरी से उतर गई जब वो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में प्रवेश कर रही थी। ये घटना तब हुई जब मोटरमैन का दूसरा डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे लोकल ट्रेन सेवाओं के सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। दोपहर करीब 2 बजे तक ट्रैक को साफ किया गया। रॉयल नीदरलैंड्स नेवी के डिप्टी कमांडर रियर एडमिरल हेराल्ड लिब्रिक्स ने D7 प्रोविंसन क्लास फ्रिगेट ट्रॉम्प की यात्रा के साथ साथ 23 से 28 अप्रैल तक मुंबई का दौरा किया। उन्होंने पश्चिमी नौसेना कमान के FOC इन सी वॉइस एडमिरल SJ सिंह के साथ बातचीत की और आपसी हित के परिचालन तथा तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के कमान का परिचालन अवलोकन और भारतीय नौसेना के नवीनतम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज का दौरा कराया गया। और अब खबर कोलकाता से। कोलकाता शहर में पिछले दो सप्ताह से भारी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में पानी की कमी का खतरा पैदा हो गया है। कोलकाता में जलकर की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर के मेयर फिरहाद हकीम ने निवासियों से पानी बर्बाद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पानी का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए और उसका संरक्षण होना आवश्यक है। तो ये थी महानगरों से संबंधित प्रमुख खबरें। और श्रोताब हम लेते हैं हाल मौसम। तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। कोलकाता में आज दिन के समय में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है, न्यूनतम तापमान आज 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो रम्या, ये तो हुई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की बात, अन्य महानगरों में आज मौसम कैसा है?
जी निखिल, सो इन चेन्नई इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर विल बी 29 डिग्रीज एंड मैक्सिमम अराउंड 36 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मेनली क्लियर स्काई, the minimum temperature will be 22 degrees and maximum around 37 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 42 degrees.
और श्रोताओं, समय हो चला जानी कुछ प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की थी। आज है 30 अप्रैल। तो आपको बता दें कि आज के दिन वर्ष 1985 में अमरीकी पर्वतारोही रिचर्ड डिक बॉस ने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की थी और वो ऐसा करने वाले सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने थे।
ऑन दिस वेरी डे इन 1863 नेवल फोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश नेवल फ्लीट।
आज के दिन ही वर्ष 1999 में हिंद महासागर के द्वीप कोमोरोस में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया था।
इन 1936 ऑन दिस वेरी डे महात्मा गांधी स्टार्टेड स्टेइंग इन सेवाग्राम आश्रम एट वर्धा इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, मेकिंग इट हिज हेडक्वार्टर्स।
आपको बता दें कि वर्ष 2001 में आज के दिन ही फिलीपींस में इरुत्रादा समर्थकों द्वारा तख्ता पलट का प्रयास किया गया था। और आज के दिन ही वर्ष 2005 में नरेश के असाधारण अधिकार को बरकरार रखते हुए नेपाल में इमरजेंसी समाप्त कर दी गई थी।
In 1939, the National Broadcasting Company made the first public television broadcast in the United States at the New York's World's Fair. In 1988, Raj Kapoor gets the Dada Saheb Phalke Award. And in 1998, Anna Hazare, social worker, was awarded the CARE International Humanitarian Award for 1998.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 2006 में आज के दिन ही भारत को 2011 के क्रिकेट विश्व कप के लिए मेजबानी मिली थी। और 2007 में आज के दिन नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया था। आज के दिन ही आपको बता दें कि 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का ओडिशा के बालासोर जिले से चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो ये थी प्रमुख घटनाएं जिन्होंने आज के दिन अपनी खास पहचान दर्ज की हुई है। और श्रोताओं, समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बता दें कि आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं हरि सिंह नलवा को, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष थे, जिस एक व्यक्ति का भय पठानों और अफगानियों के मन में पेशावर से लेकर काबुल तक सबसे अधिक था। उस शख्सियत का नाम जनरल हरि सिंह नलवा था। सिख फौज के सबसे बड़े जनरल हरि सिंह नलवा ने कश्मीर पर विजय प्राप्त करके अपना लोहा मनवाया था। यही नहीं, काबुल पर भी उन्होंने चढ़ाई की थी और जीत दर्ज की। आपको बता दें, खैबर दर्रे से होने वाले इस्लामिक आक्रमणों से उन्होंने देश को मुक्त किया और 1831 में जमरौद की जंग लड़ते हुए वे शहीद हुए थे। नौशेरा के युद्ध में हरि सिंह नलवा ने महाराजा रणजीत सिंह की सेना का कुशल नेतृत्व किया था। रणनीति और रणकौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा दुनिया के श्रेष्ठ नायकों में गिने जाते हैं। और आपको बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह ने ही उनको नलवा नाम दिया था।
इन डेथ एनिवर्सरीज टुडे वी आर रिमेम्बरिंग इंडियन एक्ट्रेस अचला सचदेव। शी वर्क्ड फॉर ऑल इंडिया रेडियो लाहौर बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड देन लेटर एट दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो। शी मेड हर फिल्म डेब्यू विद Fashionable Wife in 1938 and acted in over 130 Hindi films. She has acted in many Yash Raj films, starting with Yash Chopra's first production, Daag, A Poem of Love in 1973, and films such as Chandni, Dilwale Dulhaniya Le Jayenge, and her other noted films are Prem Pujari, Mera Naam Joker, Hare Rama, Hare Krishna, and Andaz. She has also acted in English films such as Mark Robson's Nine Hours to Rama, 1963, and Merchant Ivory's The Householder. However, her most noted role remains as Balraj Sahni's wife in Waqt in 1965, wherein she was picturized in the hit song Ae Meri Zohra Zabeen.
ऐ मेरी ज़ोहरा ज़बीं, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसीं और मैं जवान, कुछ भी कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाँसपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाँसपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ।
आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है चुन्नी गोस्वामी की। उनका नाम भारतीय फुटबॉल के इतिहास में बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय फुटबॉल के स्वर्ण युग में चुन्नी गोस्वामी भारत की राष्ट्रीय टीम के मुख्य खिलाड़ियों में से एक रहे। वे स्ट्राइकर पोजीशन पर खेलते रहे। उनका पूरा नाम सुविमल गोस्वामी है, जिन्हें फुटबॉल प्रेमी चुन्नी गोस्वामी के नाम से याद करते हैं। उन्होंने 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में उस भारतीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व किया था जिसने पहली बार एशियाई स्तर पर स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें 1963 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया और 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि उनका खेल में गेंद पर कमाल का नियंत्रण रहता था और उन्हें यह पता था कि अपने साथी खिलाड़ी को कैसे और कब गेंद भेजनी है। उन्हें फुटबॉल के इतिहास में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि 1954 में चुन्नी गोस्वामी ने अपना पहला बड़ा मैच मोहन बागान की ओर से खेला था, जिसमें टीम का मुकाबला ईस्टर्न रेलवे से था और ये मैच उनकी टीम ने 3-0 से जीता था।
निखिल, व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन सिनेमा एंड द हाईएस्ट रिकॉग्निशन फॉर वन्स जर्नी एंड कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री, ओनली वन नेम कम्स टू आवर माइंड, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहेब फाल्के। Today we are fondly remembering him on his birth anniversary. A producer, director and screenwriter, his debut film Raja Harish Chandra, released in 1913, is known as India's first full-length feature film. He was born in 1870 at Trimbak, Bombay Presidency on 30th of April. But I tell you, Nikhil, interestingly, he was not a filmmaker by his first profession. He was in fact a very well-trained oil painter and he had a printing press which was called Lakshmi Printing Press, but, you know, they call it an epiphany moment. He went to see a film with his elder brother titled Amazing Animals, and then the next day he took his parents to see a film called The Life of Jesus. And that made him envision the idea of seeing Indian deities on the big screen, and hence he decided to start the business of moving pictures. He made the film Raja Harish Chandra, and it premiered at Olympia Theatre, Bombay on 21st April 1913, and it had its theatrical release on 3rd of May. He made 95 full feature length films and 27 short films in his career.
आपको ये बता दें कि उन्होंने अपने करियर में कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरंभिक प्रयोग करने से लेकर के सिनेमा को भारतीय लोगों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए कई यात्राएं की। लंदन गए, वहां से सामान लिया और उसको लेकर के भारत में इस्तेमाल भी किया था। और उन्होंने अपनी जो अंतिम मूक फिल्म बनाई थी उसका नाम था सेतुबंधन, जो 1932 में बनी थी, जिसे बाद में डब करके उसे आवाज दी गई थी। उस समय डब करना भी एक शुरूआती प्रयोग था, यानी कि डब करने का जो प्रयोग था उसका श्रेय भी भारत में दादा साहब फाल्के को ही एक तरह से जाता है। दादा साहब फाल्के ने एकमात्र बोलती फिल्म बनाई थी और उसका नाम था गंगा अवतरण।
निभानी पड़ेगी स्वर्ग से शुभरा पर पुण्यमय वसुंधरा पर माँ गंगे करू मैं तुम्हारी आराधना।
और श्रोताओं आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये उनकी 100वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था, जिसे 1969 में शुरू किया गया। और ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो आजीवन योगदान के लिए भारत की केंद्र सरकार की तरफ से लोगों को दिया जाता है। और 1911 से जो उन्होंने शुरुआत की फिल्मों को बनाने की, उसके बाद से जब तक उन्होंने फिल्में बनाई, हर एक फिल्म उनकी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर बनती थी। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही जयंती है फातिमा बीबी की। वे भारत में सर्वोच्च न्यायालय की भूतपूर्व न्यायाधीश थी और वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनाया गया और 2023 में उन्हें दूसरे सबसे बड़े केरल प्रभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि 2024 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति फातिमा बीबी न केवल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी थी, बल्कि वे उच्च न्यायपालिका में भी पहली मुस्लिम महिला और किसी एशियाई देश में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी।
Today is also the birthday of Carnatic classical singer Sudha Raghunathan. From the age of 3, she began to learn bhajans, Hindu devotional songs and many other things. Her tutelage continued under B.V. Lakshman. In 1977, she received an Indian government scholarship to study music under a doyen of Carnatic music, Dr. M.L. Vasanthakumari, whose student she remained for 13 years. Raghunathan has performed at the Madras Music Season every year since 1990, and she has been awarded the Padma Shri in 2004, the Padma Bhushan in 2015, and in 2013 she was awarded Sangeet Kalanidhi of Madras Music Academy.
श्रोताओं आपको बता दें कि आज हम याद कर रहे हैं ऋषि कपूर को, आज उनकी पुण्यतिथि है। वे हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक रहे हैं। एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी और फिल्म बॉबी के लिए 1974 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि फिल्म मेरा नाम जोकर में शानदार भूमिका के लिए उन्हें 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
कहाँ उड़ चली पर कहाँ।
Today is also the birthday of Sonal Mansingh, renowned Indian classical dancer and guru in Bharatnatyam and Odishi. She has Praveen and Covid degrees in Sanskrit from Bharatiya Vidya Bhavan and BA Honours degree in German Literature. Though her initial training in dance started at 18, she became a successful dancer later on.
और श्रोताओं, अब घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही हैं कि आप सभी से अनुमति लेने का समय हो चला है, तो इजाजत दीजिए निखिल और रम्या को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर संपन्न करने की।
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय द मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।